रविवार 8 मई दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन आप सबको नमस्कार। बिहार में जेडीयू नेता के बेटे के साथ कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या, नेता के पति भी आरोपियों में। उत्तराखंड में जारी है राजनीतिक घमासान, एक और स्टिंग आया सामने, कांग्रेस और बीजेपी में तेज हुई जुबानी जंग।
अब वो क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ हैं, वो हरीश रावत जी से या कांग्रेस के लोगों से लाइसेंस लेके यहाँ आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, कांग्रेस और वाम दलों पर किए तीखे प्रहार। सुनिएगा संडे दिनभर में आज खास मुलाकात सूफी गायक हंसराज हंस के साथ।
फरीदा काले मेंढे कपड़े।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार के गया में एक छात्र की हत्या के मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे की पुलिस तलाश कर रही है। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर आरोप है कि उसने कल रात एक छात्र आदित्य सचदेव की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। गया की वरिष्ठ अधीक्षक गरिमा मलिक ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि मामला रोड रेज का लगता है। वहीं विधान पार्षद मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को इस मामले में संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में एक जाने माने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जाकी की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जाकी एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे जब मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्धों ने उन पर गोलियां चलाईं। खुर्रम जाकी लेट अस बिल्ड पाकिस्तान वेबसाइट के संपादक थे। ये वेबसाइट सांप्रदायिकता का विरोध करती रही है। पाकिस्तान तालिबान के प्रवक्ता ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज के खिलाफ खुर्रम जाकी के बयानों के कारण उनकी हत्या की गई है। जाकी और कुछ अन्य प्रचारकों ने अब्दुल अजीज के खिलाफ शिया समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने का मामला दर्ज करवाया था। अफगानिस्तान में दो बसों और एक टैंकर के बीच टक्कर में 73 लोगों की मौत हो गई है। बसों और टैंकरों की टक्कर में इतनी जबरदस्त आग लग गई कि झुलसे हुए शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। गजनी अस्पताल के प्रवक्ता बाज मोहम्मद हेमत ने कहा है कि कई जख्मी लोगों की हालत बहुत खराब है। हमने मुकुर में हुए हादसे में जख्मी हुए 24 लोगों को अब तक भर्ती किया है। इनमें 4 बच्चे और एक महिला शामिल है। ज्यादातर लोग झुलस गए हैं। इन्हें राजधानी काबुल भेजा जाएगा ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। ये थे बाज मोहम्मद हेमत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में लश्करगाह शहर के बाहरी इलाके में एक पुलिस नाके पर तालिबान ने हमला किया है। तालिबान का दावा है कि 2 नाकों पर हमलों में 15 सुरक्षा अधिकारियों को मार गिराया है और सेना की एक गाड़ी को उड़ाकर कई हथियार बरामद किए हैं। वहीं हेलमंड प्रांत के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान सारजंग ने कहा है कि 14 तालिबान लड़ाकों की इस हमले की जवाबी कार्रवाई में मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 4 सुरक्षा अधिकारियों की भी मौत हुई है। सीरिया के हामा में बिना मुकदमे वाले कैदियों को रिहा करने की मांग को लेकर सीरियाई सेना और कैदियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। जेल में कैदियों की मांग है कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए जिन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। आज रविवार का दिन है लेकिन सियासी मैदान में सरगर्मियां तेज हैं। उत्तराखंड में एक और स्टिंग सामने आई है तो दूसरी तरफ केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलियां कर चुनावी बिसात पर बीजेपी का खम ठोक रहे हैं। इनकी चर्चा से पहले चलते हैं बिहार में गया, जहां कल देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस युवक ने जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के बेटे की कार को ओवरटेक किया था। इसके बाद नेता के बेटे और इस युवक में झड़प हुई और फिर उसे गोली मार दी गई। पूरे ब्यौरे के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
शनिवार रात गया शहर में एक छात्र आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बहाने बिहार में विपक्ष आज एक बार फिर सूबे में जंगलराज की वापसी के आरोपों के साथ हमलावर रहा। विपक्ष इस मामले में इस कारण ज्यादा आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है क्योंकि हत्या में सत्तारूढ़ जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के परिजनों के नाम सामने आए हैं। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। साथ ही मनोरमा देवी के पति बिंद यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने अपराध रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है।
बिहार में लगातार सत्ताधारी दल के विधायकों एवं उनके परिवार के लोगों के द्वारा जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, अपराधियों को जेल से छुड़वाना, ये सारी घटनाएं विगत 3-4 महीने के अंदर सत्ताधारी दल के विधायकों के द्वारा घटित हुई। लेकिन सबके मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री इन लोगों पर लगाम लगाने में असफल साबित हुए और ऐसी परिस्थिति में अब यही विकल्प बचता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने ही विधायकों के द्वारा किए जा रहे अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं, तो अपराधियों के द्वारा किए जा रहे अपराध को कैसे रोक पाएंगे।
घटना शनिवार रात करीब 8:30 की है। गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर हुई कथित कहासुनी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही घटना में शामिल कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस घटना के बारे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा,
अगर ऐसी कोई भी बात आती है, अगर कोई भी क्राइम से रिलेटेड या कोई भी चाहे कोई पद का हो या कोई व्यक्ति हो, अगर कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उसको कड़ी से कड़ा सजा हम लोग देने का काम करेंगे। अभी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई है, जहाँ तक एसपी साहब ने बोली कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और जो रॉकी है जिनका जिक्र आप लोग कर रहे हैं उसके लिए छापेमारी चल रही है। तो एक बार जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है, उनको तस्वीर वगैरह दिखा करके पहचान कराया जा रहा है कि ये लड़का है कि नहीं है, और इसमें हम लोगों ने साफ साफ निर्देश दिया कि जो भी अगर इसमें दोषी पाए तो उसको सजा।
बिंद यादव को गया जिले का बाहुबली नेता माना जाता है। बिंद यादव के अलग अलग बयान एक स्थानीय न्यूज चैनल पर सामने आए हैं। एक बयान में वे घटना के समय रॉकी के दिल्ली में होने की बात कह रहे हैं, जबकि दूसरे में उनका कहना है कि रॉकी ने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई। पटना से FSL टीम रामपुर थाना पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। घटना के बाद गया के कुछ हिस्सों में आज लोगों ने सड़क जाम किया, साथ ही NDA ने कल गया बंद का भी ऐलान किया है। मनीष शांडिल, BBC पटना।
उत्तराखंड में 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक नई CD अब सामने आ गई है, जिसमें कांग्रेस के विधायक मदन बीस्ट कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर हरीश रावत की कोशिशों के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। मदन बीस्ट ने इस स्टिंग को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सरकार को बनने न देने की साजिश का हिस्सा है। इस बीच कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि BJP के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उत्तराखंड से जाने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक वो यहां विधायकों की खरीद फरोख्त करने और 10 मई के शक्ति परीक्षण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव जोशी की रिपोर्ट सुनिए।
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण को 2 दिन बाकी हैं, लेकिन लगता है कि इन दिनों में इतना राजनीतिक घमासान यहां मचा रहेगा कि शक्ति परीक्षण के नतीजों को भी उलट पलट सकता है। कांग्रेस और BJP सदन में अपनी ताकत दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ जबानी जंग तो तेज हो ही गई है, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप भी अब तीखे होते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि एक गैंग देहरादून में सक्रिय है जो किसी भी सूरत में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक रहा है।
मालूम पड़ा है कि 2 शीर्षस्थ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट्स को उनके पुराने स्टिंग दिखा करके उनको इस काम पर लगाया गया है कि वो सरकार गिराने के लिए, मतलब हम बहुमत साबित न कर सकें, सरकार गिरा तो दी उन्होंने, अब हम बहुमत साबित न कर सकें, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया गया।
हरीश रावत ने BJP के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर फिर निशाना साधा और राज्यपाल से उन्हें देहरादून से बाहर भेजने की मांग की।
कहीं कहीं इसमें या तो कोई शीर्षस्थ अधिकारी या शीर्षस्थ राजनेता सम्मिलित था, जिनके कारण ये पट्टों के आवंटन और स्वामित्व में धांधली की गई थी, और धांधली में भूपेश उपाध्याय की सदस्यता बिल्कुल साफ है और भूपेश उपाध्याय उस गैंग के पार्ट हैं जो गैंग जो है
विजय वर्गी जी के नेतृत्व में, विजय भैमणा जी के नेतृत्व में, साकेत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को सफल डाउन करने के लिए जिम्मेदार।
उधर बीजेपी ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके विधायक और वो खुद स्टिंग में फंस रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे हैं, तो फिर किस मुंह से बीजेपी या उसके नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं।
अपना फ्लोर टेस्ट प्रभावित कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त स्वयं करते हुए पकड़े गए हैं, और उनके एक विधायक ने तो कह दिया 12 विधायकों को हमने पैसा दे दिया है, 1 करोड़ से लेकर टोकन कुछ लोगों को 25-25 लाख दिया, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक दिया है, और खनन में 27 करोड़ रुपए हरीश रावत जी की जेब में गए हैं, उनके विधायक कह रहे हैं, उनके खेमे के विधायक कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में। अब वो क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ हैं वो हरीश रावत जी से या कांग्रेस के लोगों से लाइसेंस लेके यहाँ आए।
कांग्रेस ने अपने विधायकों को मसूरी के पास एक होटल में रखा है, बीजेपी विधायक देहरादून में ही जमे हैं। ये अटकलें तेज हैं कि 10 मई को आंकड़े इधर से उधर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी पाला बदलेगा ये तय है कि उसकी विधानसभा सदस्यता भी चली जाएगी। दूसरी बड़ी अटकल ये है कि अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत की जगह किसी और नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में वरिष्ठ मंत्री इंदिरा हृदयेश का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के चुनाव में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर रैली की, दिन में वो कासरगोड में थे और अब से कुछ देर पहले तिरुवनंतपुरम में। कासरगोड की रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चल रही है। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों पर केरल के पढ़े लिखे लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि राज्य की समस्याओं को दूर करने की तरफ इन राजनीतिक दलों का जरा भी ध्यान नहीं। सुनिए नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा।
और यहां पर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने लगातार राज किया है, लेकिन आपको पीने का पानी पहुंचाने की उनको चिंता तक नहीं है। जो लोग 70 साल तक आपको पीने का पानी नहीं दे पाए, क्या उनको चुनाव में वोट देना चाहिए? कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ती और कम्युनिस्ट हिंसा करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो केरल के गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। एक 85 पैसा कौन पंजा चुरा लेता था, कौन पंजा चुरा लेता था।
केरल में चुनाव प्रचार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ, और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। ग्रीस की संसद के सामने आज हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 2 दिनों तक चली हड़ताल और पेंशन कानून पर आज होने वाले धन्यवाद प्रस्ताव से ठीक पहले हुआ है। प्रदर्शन करने वाले में लोग पेंशन में संभावित कटौती का विरोध कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कश्मीर शमाइल से।
ग्रीस के संसद के बाहर आज बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। ग्रीस के संसद में जल्द ही नए टैक्स और पेंशन बिल पर मतदान होना है। ग्रीस के लोगों को आशंका है कि नए कानूनों में पेंशन पर होने वाले सरकारी खर्चों में कटौती होगी। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उनके संघ के महामंत्री जॉर्ज थियोडोरू ने कहा, ये बिल एक तरह से श्रमिकों के लिए सिर काटने वाले हथियार जैसा है और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। यहाँ तक कि अगर इस पर मतदान भी हो तब भी मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन से पहले 2 दिन की आम हड़ताल भी बुलाई गई। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता पाने के लिए जिन शर्तों पर अमल करना है उसमें पेंशन बिल में कटौती भी शामिल है। लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे कम्युनिस्ट श्रम आंदोलन के एक नेता यानिस कौसिस कहते हैं कि ये उपाय ग्रीस के युवाओं का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं कर सकेगा उन्होंने कहा आज के ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिल पाएगी। श्रमिक वर्ग को ऐसा होने से रोकना चाहिए और इसी वजह से हमने तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा है। ग्रीस में प्रदर्शन अभी भी जारी है। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की सोमवार को एक आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें बेल आउट और कर्ज से राहत पर चर्चा की जाएगी।
ग्रीस में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है संसद के सामने। पूरा ब्यौरा सुना रही थी कश्मीर शमायल। आज रविवार है और रविवार को हम आपकी एक खास मुलाकात कराते हैं अपने किसी खास मेहमान से, और आज जिनकी हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं वो हैं हंसराज हंस। सूफी गायन की बात हो तो कई बड़े नामों के बीच में ये नाम भी गूंजता है। हंसराज हंस ने मूलतः पंजाबी में गाने गाए हैं और इस बार वही हमारे संडे दिन भर के मेहमान हैं। उनसे ये खास बातचीत की है बीबीसी उर्दू के असद अली चौधरी ने भारत के पंजाब में।
चंबे मुर्शद मन मेरे बिच लाई हो। मैं मौसीकी से खास तौर पे सूफी म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक है। मैं सालिक हूँ, मैं मुरीद हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रागीर हूँ सूफी म्यूज़िक का।
अच्छा, आपने कहा कि आप सूफी दरवेशों को मानने वाले हैं और सूफी शायरी जो करते हैं, तो इसमें जब आपने शुरू किया था गाना और ये इसको परफॉर्म करना, उसमें और आज तक जो आपका सफ़र है, इसमें इसकी कशिश में, अट्रैक्शन में कोई कमी आई है?
आज से 30-40 साल पहले कह लें, मेरा 1964 का बर्थ है, जब मैं 5-6 साल का ही था, बचपन से ही मैं गाता हूँ। लेकिन शुरू में फोक होता है। हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं, कोई भी बंदा हमारे ख़ानदान में पहले गुलूकार नहीं हुआ, तो मैं पहला बंदा था जो बेसाख्ता गाने लग गया। जीवे मेरा मुर्शिद कामिल। बाद में इत्तफाक ये हुआ कि जो मेरे मुर्शिद मौसीकी बने, उस्ताद बने, गुरु बने संगीत के, वो दरगाहों के सिंगर थे, दरवेशों को मारने वाले थे। तो बच्चे की जैसी परवरिश हो, तरबियत हो, बच्चे के वैसे ख्यालात हो जाते हैं। पहली बात तो मैं अपने गांव का नाम आपको अर्ज़ करूं, शफीपुर नाम है। मोहम्मद शफी बहुत बड़े दरवेश हुए हैं, उनके नाम से ये गांव है। जिक्र करने का मेरा मकसद ये है कि पार्टीशन में बेशक हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए, लेकिन शफीपुर में मस्जिद भी कायम है और सारी दरगाहें भी कायम है। मियां साहब की एक जगह जो मियां मोहम्मद शफी की, वहाँ सारे मजहबों वाले चिराग जगाते हैं थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन। तो थोड़ा सा वहाँ की कह लें वाइब्रेशन थी। फिर उस्ताद जी भी वैसे मिले जैसे पाकिस्तान में मुल्तान है ना, ऐसे पंजाब में नकोदर शहर है, वहाँ बहुत दरवेश हुए हैं। तो वहाँ फिर मुझे मेरे उस्ताद जी ने छोड़ दिया, मेरी तरबियत उस दरगाह पे हुई, फिर मेरी वैसी सोच होगी। सच जो है, सच का नाम ही अल्लाह है, सच का नाम ही राम है, सच का नाम ही भगवान है, सच का नाम ही सारा गॉड है। आहिस्ता आहिस्ता मैं सूफी की तरफ ही, पहले मैंने फोक गाया, पॉप गाया, फिल्मों में गाया, नॉन फिल्मी गाया, बाद में फिर मैंने एक्सक्लूसिव ही शुरू कर दिया। Only Sufism.
अंदर बूटी मुश्क मचाया,
फिर मैं ज्यारतें की। पाकिस्तान में बेशुमार बार गया, दाता साहब के दरबार गया और बाबा फरीद पाकपटन गया, बाबा बुल्ले शाह साहब के तो जाना ही था, क्योंकि सूफीज़म जब बाबा बुल्ले शाह का जिक्र आता तो सूफीज़म ऐसे लगता जैसे वजद में आ गया। तो वहाँ गया, बाबा वारिस शाह सरकार के गया, इधर हम अजमेर शरीफ अक्सर जाते हैं, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया,
آپ نے کہا کہ آپ کا تو بچپن میں ایک خاص ماحول تھا جس کی وجہ سے آپ کا رجحان اس طرف بنا اور آگے سے آپ نے پھر خود یہ ہاتھ پکڑ لیا، لیکن باقی جو پنجاب میں اس کی مقبولیت یا شہرت ہے اس کلام کی، اس کی کیا صورتحال ہے؟
جو خوبصورت بات ہوتی وہ خود بخود ٹریول کرتی ہے، وہ پروموٹ کی نہیں جاتی، وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس قدر زندگی میں شامل ہے کہ لوگ یعنی محاورے، فریزز، جا خانے، جا ایسے مثالیں دیتے ہیں کہ وارے شاہ لکائیے جگ کھولوں پامے اپنا یہ گڑ کھائیے جی، یا کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے گایا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو اس کا پرچار کریں نہ کریں، جو سچ ہے اس کا پرچار خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو اپنا لیں، لیکن سب کو واقفیت ہے صوفی پوئٹری کی اور سب بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹرینڈ آتے ہیں، ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں، کبھی پاپ کا آ گیا، کبھی فوک آ گیا، لیکن صوفیزم اور کلاسیکل وہیں پہ ٹکے ہوئے۔
آج کل کیا صورتحال ہے؟ مطلب نئی جنریشن آ رہی ہے، نئی میوزک آ رہے ہیں، نئی میوزک کی فارمز ہیں۔
خوشی کی بات یہ ہے کہ ینگ جنریشن بھی صوفیزم کو گاتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے صوفی کا۔ فلموں میں بھی میرا عشق صوفیانہ، تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ عشق عشق ہی ہوتا ہے، یہ نہ کہنا میری جین صوفیانہ، میری شرٹ صوفیانہ۔ پر اویئرنیس ہے کہ صوفیزم ہے کوئی، یہ شکر ہے۔ لیکن بزرگان دین سے لے کے جہاں یہ جو لوگ ہوئے درویش صوفی، ان کا کلام ہو بہو گانے والے کم ہیں، سننے والے بھی کم ہیں، لیکن صوفیزم کا پتہ ہے سب کو۔
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ضرورت یہ پوری کر رہا ہے اندر، اور اس کا نچوڑ کیا ہے بنیادی؟
ہر مذہب، ہر ملک، ہر خطہ ان کو اب انسیکیور شاید فیل کر رہے ہیں، اسی لیے مذہب مذہب کا دشمن ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، ملک ملک کا دشمن ہو رہا ہے۔ ہر مذہب کو لگتا ہے میرا مذہب سیف رہے، باقی مذہب چاہے ختم ہو جائے۔ صوفیزم اونلی ہے جو پوری یونیورس کے لیے دعا کرتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن انسان انسان سے نفرت کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، حضور پاک نے یہی کہا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب جو سارے عالم کا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے رب المسلمین، ٹھیک ہے۔ ان کو خود کو بھی یہ لقب ملا کہ رحمت العالمین، ٹھیک ہے، وہ رحمت لے کے آئے تھے سارے عالم کے لیے۔ ایسے رام نے کہا بھگوان نے، ایسے کرشن میں گیتا میں کہا، ایسے ہی کرائسٹ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہمارے جتنے بھی روحانی رہبر آئے ہیں، بدھا نے ایسے کہا، عیسیٰ نے ایسے کہا، یو نو۔ لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، پیار کرو، محبت کرو۔
اچھا جی، آپ کے لیونگ روم میں دیکھ رہا تھا یہ تصاویر، تو ان میں ایک یہ سامنے بابا جی کی تصویر ہے، بابا فرید کی، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں، اور یہ آپ کا ان سے کیا مطلب نسبت یا تعلق ہے؟
بابا فرید جنہیں گنج شکر کہا جاتا ہے، وہ انتہائی عشق ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں فریدہ ایسے ہو رہو جیسے ککھ مسیت، پیراں ہیٹھ لتاڑیے پھر بھی نہ چھاڑے فرید۔ تو بابا فرید صاحب پنجابی کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ پہلے
بابا جی کے بھی دو بول سنا دیں گے اگر۔
فریدہ کالے مینڈے کپڑے، فریدہ کالے مینڈے کپڑے، تے کالا مینڈا ویس، گل ہی پریا میں پھراں، لوک کہے درویس، اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پری तेरी डाडे नाल परी।
सूफी गायक हंसराज हंस से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी असद अली चौधरी। और आइए अब खेल समाचार सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से। आदेश जी, क्या है आज खेल की खबरों में?
जी देखिए निखिल, आज खेल की खबरों पे काफ़ी कुछ है। अगर सबसे पहले बात की जाए कुश्ती की, तो इस्तांबुल में आयोजित किए जा रहे दूसरे विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में महिला वर्ग के मुकाबलों में 48 किलो भार पर में भारत के विनेश फोकाट ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की इवोना मातकोवस्का को एक तरफा रूप से 6-0 से मात दी। लेकिन 58 किलो भार वर्ग में भारत की साक्षी मलिक रूस की वालेरिया कोब्लोवा से फाइनल में 7-3 से हार गई। उल्लेखनीय है कि कल फाइनल में पहुंचने के साथ ही विनेश और साक्षी ने रियो का टिकट भी हासिल किया था। इस मामले में विनेश फोकाट दरअसल काफ़ी भाग्यशाली रही, क्योंकि इससे पहले जो एक और क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था रियो ओलंपिक्स के लिए, वहाँ पर विनेश का वज़न 400 ग्राम अधिक पाया गया था और तब उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये उनकी पहली गलती थी। लेकिन 2-3 पहलवान ऐसे हैं जो अगर इस तरह की गलती ना करते तो शायद भारत को एक कोटा और मिल सकता था। और कोड़ में खाज वाली बात ये है कि ये पिछले दिनों विदेशों में ट्रेनिंग कर रहे थे, यूक्रेन जैसी जगह में, और पुरुष वर्ग में भी एक दो खिलाड़ी ऐसे थे जिनका वज़न अधिक पाया गया। अब जाहिर सी बात है कि जो रियो ओलंपिक्स के लिए कुश्ती के क्वालिफाइंग मुकाबले हैं वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, तो दो महिला पहलवान और 4 पुरुष वर्ग में पहलवान रियो में जाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। और अब भारतीय कुश्ती महासंघ की जिम्मेदारी है कि वो खिलाड़ियों से पूछे कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसी हुई, या फिर उनके कोचों से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या रियो में सुशील कुमार जाएंगे या नरसिंह पंचव यादव जाएंगे। थोड़े ही समय में इन दोनों के बीच ट्रायल होगा, जो उसका विजेता होगा वही जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से सुशील कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो नरसिंह पंचम यादव के दावे को झूठा साबित करें। उधर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का फाइनल आज 6ठी वरीयता हासिल भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया, और तीसरी वरीयता हासिल नीदरलैंड्स के जीन जूनियर रोजर और उनके जोड़ीदार रोमानिया के हेरिनिया होरियत एकाओ के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो ये मुकाबला शुरू हो चुका है। इससे पहले कल महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस, जिन्हें शीर्ष वरीयता हासिल थी, वो फाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। जबकि पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे एक दूसरे के सामने होंगे। इस मुकाबले में सबकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि लंबे समय बाद दुनिया के ये दो धुरंधर, और खासकर ये देखते हुए कि दोनों टॉप सीड खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने होंगे। और उधर अगर आईपीएल की बात की जाए तो आज सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरह से ये कहना होगा कि मुंबई इंडियंस के बैंड बजा दिए, क्योंकि आज सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 85 रनों के अंतर से काफ़ी बड़ी मात दी है। मुंबई के सामने जीत के लिए 178 रनों का लक्ष्य था, लेकिन देखे निकल के उनकी पूरी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 16.3 ओवर में ही उनका पुलिंदा केवल 92 रनों पर सिमट गया।
बड़ा दुर्भाग्यजनक कहेंगे,
दुर्भाग्यजनक नहीं बल्कि इसमें करिश्मा रहा आशीष नेहरा जैसे, कहना होगा पुराने चावल, आज क्या खुशबू उन्होंने बिखेरी, और उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। लेकिन तारीफ के असली हकदार हैं बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। और इससे पहले अगर ये ना बताए कि सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने 48 और शिखर धवन ने 82 रन बनाए थे, थोड़ा फिर नाइंसाफी होगी उनके साथ, जिसकी मदद से हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 177 रन बनाए थे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता जी इस विस्तृत खेल समाचारों के लिए। और आइए अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार के गया में एक छात्र की हत्या के मामले में सत्तारूढ़ जेडीयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे की तलाश जारी। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में एक जाने माने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जाकी की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तालिबान ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में 2 बसों और 1 टैंकर के बीच टक्कर में 73 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। कनाडा के जंगलों में आग का कहर 7वें दिन भी जारी है। अल्बर्टा राज्य के 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में आग फैल चुकी है। आग बुझाने में 500 कर्मी और 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। اشرف غنی کے 2014 میں راشٹرپتی بننے کے بعد افغانستان میں پہلی بار 6 طالبانیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ بی بی سی سماچار
پرمکھ سماچار سنا رہی تھی ہرتا کانڈ پال۔ دن بھر میں آج اتنا ہی، آج اسٹوڈیو سنبھالا راجیش چوہان نے، ڈیڑھ گھنٹے بعد گھٹنا چکر میں پھر ملیں گے۔ نکھل رنجن کو دیجیے انمتی، نمسکار۔